नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की महिलाएं विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ हैं और सरकार नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। सरकार ने भीषण लू से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श जारी किया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान के हमले में 7 लोगों की मौत और समोआ में राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की महिलाएं विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ हैं और सरकार देश के नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला सम्मेलन में उन्होंने विपक्षी दलों पर संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को समर्थन न देकर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया।
मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू हुई दो नई अमृत भारत रेलगाड़ियां काशी और अयोध्या को महाराष्ट्र से जोड़ेंगी।
काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
प्रमुख परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास, संत रविदास पार्क नगवा का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य, यूपी कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण और 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट सहित प्रमुख घाटों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन योजना की आधारशिला रखी, जिसमें गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल सुबह प्रधानमंत्री वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरदोई जाएंगे और गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह में 4,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने राज्य में संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है, इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सेजा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जिलों की 142 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 40,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 220 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। आयोग के बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग न करने के पूर्व निर्देश के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षा बल रूट मार्च चला रहे हैं। पहले चरण में 93% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
मतगणना 4 मई को केरलम, असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में सभी प्रमुख नगर निगमों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जनादेश से राज्य और पार्टी के बीच संबंध और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने एक बार फिर सुशासन की राजनीति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में भरोसा व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट सहित राज्य की 15 महानगर पालिकाओं में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसमें नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी और आनंद जैसे नवगठित निकाय भी शामिल है। नगर पालिकाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा ने 1988 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को 459 सीटें मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा का दबदबा देखने को मिला है, जहां पार्टी ने जिला पंचायतों में 887 जबकि तालुका पंचायतों में 3600 से अधिक सीटें हासिल की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लोगों से जुड़ी सामान्य गतिविधियां बाधित होने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केरलम के सबरीमला मंदिर सहित पूजा स्थलों पर धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी और पीएनजी तथा सीएनजी की 100% आपूर्ति का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए और डोमेस्टिक पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रिस्टोर कर दी गई है। हमारे एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। अब तक लगभग 1,75,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है और कल लगभग 9,578 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के अंतर्गत विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब के आधारशिला रखते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेमीकंडक्टर और उन्नत चिप निर्माण तथा एआई प्रौद्योगिकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहले की गईं, लेकिन उस समय हम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर निर्माण और मोबाइल फोन निर्माण जैसे क्षेत्रों में पीछे रह गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण प्रमुख था। आज मोबाइल फोन हमारे देश का सबसे बड़ा निर्यात होने वाला उत्पाद बन चुका है।
एक्सपोर्टेड आइटम इन अ कंट्री।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के परिवहन प्रणालियां वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। इससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सकेगा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि देश में परिवहन क्षेत्र अब सिर्फ लागत तक सीमित नहीं है बल्कि गुणवत्ता और सुविधा की ओर बढ़ा है।
We are making good highways.
हम अच्छे राजमार्ग बना रहे हैं। यही एक कारण है कि अब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से किफायती और बहुत आरामदायक भी है। हमने दिल्ली से देहरादून तक की सड़क का उद्घाटन किया। पहले इसमें 8 से 9 घंटे लगते थे, लेकिन अब हम 2 घंटे के भीतर वहां जा सकते हैं। साथ ही हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, प्रकाशन और वितरण कार्यों की समीक्षा की। श्री प्रधान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुस्तकों की उपलब्धता और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को किताबों की समय से पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए राज्य प्रशासन तथा वितरण एजेंसियों के साथ समन्वय की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने बढ़ते तापमान और लू के प्रतिकूल प्रभावों से कामगारों और मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रव्यापी परामर्श जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
देश में इस समय कई क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कर्मियों, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को जरूरी निर्देश जारी करें ताकि वे मजदूरों की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय लागू कर सकें। इसके अलावा कार्यस्थलों पर पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के साथ साथ विश्राम स्थलों और कार्यस्थलों को ठंडा रखने का प्रावधान करने को भी कहा गया है। वहीं कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय रखने को भी कहा गया है। निर्माण के काम में लगे कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों और स्थायी मजदूरों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ORS, आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के अन्य सामान का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को भी कहा है। मंत्रालय ने सभी संगठनों से इस संबंध में की गई कार्यवाही और उपायों के बारे में हर 15 दिन में स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इलेक्ट्रॉनिकी सेक्टर ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रो ने कहा कि इस समझौते से नए बाजार के अवसर खुलेंगे और भारतीय व्यापारियों को लाभ होगा।
Our approach has been very calibrated.
हमारा दृष्टिकोण बहुत सुनियोजित रहा है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 अरब का निवेश करने का वादा किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। हमें प्रसन्नता है कि ये अन्य मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप है। ये एक महत्वपूर्ण समझौता है और उद्योग जगत इसका स्वागत करता है।
अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए हैं। हमलों में प्रांतीय राजधानी अस्ताबाद और सरकानो जिले सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। कई आवासीय क्षेत्रों और सैयद जमालुद्दीन अफगान विश्वविद्यालय पर भी हमले हुए। अफगानिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। समोआ में राष्ट्रमंडल युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा संबंधित यूनिवर्सल कप सीनियर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों में सुनील सिंह और अभिनव गोगोई जबकि महिला वर्ग में एसांगफा गोगोई ने स्वर्ण पदक जीता। यूनिवर्सल कप के पुरुष वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के चारू पेसी ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब शीर्ष पर जबकि राजस्थान चौथे नंबर पर है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और चीन इस ग्रुप में शीर्ष पर हैं। झारखंड में जनगणना की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। पहले चरण में 1 से 15 मई के बीच स्वगणना होगी और 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना की जाएगी। लोग se.census.gov.in पोर्टल पर स्वगणना कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की महिलाएं विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ है और सरकार नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। सरकार ने भीषण लू से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श जारी किया और समोआ में राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।